رسول نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ تعالی سے شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے کانپور کے اندر ایک عالم نے کہا کہ حضرت یہاں کے تاجروں نے مجھے وکیل بنایا ہے کہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے علماء ربانیین کے مواعظ میں، تقاریر میں، خطاب و بیانات میں یہ بات سنتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کی محبت دل سے نکالو، اور اگر ہم دنیا سے محبت نہ کریں گے تو دنیا کے کام ہو نہیں سکتے۔ تو اس بات کی ذرا وضاحت فرما دیجئے اور سمجھا دیجئے۔ تو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے، دنیا کی شدید محبت بھی جائز ہے، اور اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ انہ لحب الخیر لشدید، کہ شدید محبت کرتے ہیں دنیا سے۔ تو فرمایا شدید ماں باپ کی، اولاد کی، کاروبار کی، مکان کی شدید محبت بھی جائز ہے۔ لہذا دنیا کی محبت کوئی شدت کی اجازت دی کہ وہ شدید ہو، لیکن اللہ تعالی کی محبت اشد ہو۔ لہذا وہ محبت شدیدہ، اس سے کوئی انکار، اس سے انکار نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا، لیکن اشد محبت کا جو مقام ہے، گویا کہ دل کی گہرائیوں سے جو محبت ہے وہ اللہ تعالی سے ہو۔ شدید اور اشد کا فرق کیا ہے، اس کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں حضرت ہی سمجھاتے تھے۔ فرماتے تھے الیکشن ہے، الیکشن میں دو دوست کھڑے ہوئے، ایک دوست نے آ کر کہا کہ مجھے ووٹ دینا، اور دوسرے دوست نے کہا کہ مجھے ووٹ دینا۔ اب جب پولنگ اسٹیشن گیا، بیلٹ پیپر اس کے ہاتھ میں آیا، تو فرمایا کس پر ٹھپا لگائے گا، جس کی محبت دونوں سے شدید محبت، دونوں دوست ہیں، لیکن جس کی محبت اشد ہوگی اس پر ٹھپا لگائے گا۔ لہذا اس کو اور یوں سمجھائے کہ دیکھو، دنیا سے اگر مان لو دنیا کی محبت کی کوئی ڈگری ہے کہ جی اس ڈگری، اتنے ڈگری محبت کرتے ہیں، اتنی شدت ہے، تو اس ڈگری محبت کو اگر ناپا کے 50 ڈگری محبت جو ہے، اے میاں ادھر دیکھ کے سنو، زمین سر جھکا کے بس سنو، تھکاوٹ تو نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی ہے نا، لیکن توجہ سے دیکھو، اگر مان لو کہ دنیا کی محبت 50 ڈگری ہے، تو اللہ تعالی کی جو محبت ہے وہ 51 ڈگری ہو جائے۔ یہ ہو گیا، فرق یہ ہے اشد محبت۔ اس کے لیے ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں، اللہ تعالی کی محبت میں دوسروں کی محبت کا انکار یہ لازم نہیں ہے، بس معیار ہے کہ معیار محبت اور شدت محبت، لہذا شدت محبت وہ غالب رہے، اور اس کا پتہ موقع پہ چلتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہ موقع ہے۔ مثلا اب ایسا موقع آیا کہ کسی عورت کو دیکھنے کا، کوئی حسین ہے، اب نفس کی ڈیمانڈ اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو دیکھ لو، اور اللہ تعالی کی محبت کا تقاضا ہے کہ نہ دیکھو۔ اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ کے اسباب سے دوری اختیار کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ حسینوں کا حسن کش کرے گا، یعنی کھینچے گا، اور خوف خدا مکش کرے گا، مت کھینچو، وہ کش کرے گا، کش کھینچو اور یہ ہوگا مکش، مت کھینچو، तो खींचो ना खींचो, खींचू ना खींचू, खींचू ना खींचू, कश मकश। फरमाया इस कश मकश के अंदर नतीजा ये होगा कि दिल बड़ा हो जाएगा। खेचा तानी में चीज बड़ी हो जाती है ना, तो इस कश मकश में दिल बड़ा हो जाएगा। और जब दिल बड़ा होता है तो वो बीमारी है, उसका नाम है एंजाइना। एंजाइना की बीमारी में दिल बड़ा हो जाता है। हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह के एक पीर भाई थे, तो हजरत उनकी आयादत को तशरीफ ले गए, तो हजरत पूछा भाई क्या हाल, क्या क्या बताया। कहा हजरत सारी जिंदगी में जिसका इंतजार करता था वो इनाम अब मिला। पूछा भाई वो क्या। हजरत मैं चाहता था मेरा दिल बड़ा हो जाए, अब डॉक्टर ने बताया कि मेरा दिल बड़ा हो गया। हजरत मैं तो कितना खुश हूं। अब आप देखिए, यानी अंदाज देखिए, ये है अल्लाह सब्र और अल्लाह के फैसले पर राजी रहने का तरीका। एक एक शिकवा शिकायत कर दी, एक एक बात भी बता दी कि दिल बड़ा हो गया, अंजाइना हो गया, लेकिन उसका पेश करने का अंदाज सुभान अल्लाह किस पैराए में पेश किया कि गोया कि उसको भी एक शुक्र और सब्र और रजा बिल कजा और तस्लीम की कैफियत में पेश कर दिया। हजरत डॉक्टर करार साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे शेख के पीर भाई हजरत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे, हकीम उल उम्मत के मलफूजात का इंसाइक्लोपीडिया थे, उनको आप बिठा दे बस शुरू हो जाते थे। इंतकाल फरमा गए, मैंने भी ज्यारत की है, तो हजरत वाला की मजलिस में रोजाना, तो हजरत उनकी अयादत को तशरीफ ले गए, तो उनके पाँव उन पर असर हुआ, तो पाँव पूरे इतने फूल फूल गए, मोटे मोटे हो गए। हजरत वाला रहमतुल्लाह ने उनसे पूछा भाई डॉक्टर साहब क्या हाल है। कहा हजरत क्या बताऊं, ऐसी सेहत है कि जवानी में भी ना थी। तो हजरत ने फरमाया वो क्या। कहा हजरत ये देखिए इतने मोटे पांव तो जवानी में भी नहीं थे, देखिए कैसे मोटे हो गए। यानी इसको कहते हैं सुभान अल्लाह सब्र रजा बिल कदा, अल्लाह ताला के फैसले को तस्लीम करना, अल्लाह ताला के फैसले के आगे गर्दन झुकाना और खुशी खुशी रहना। ये अल्लाह वालों का वो होता है जो इस मौके इन मौके पर पता चलता है, खुसूसन तकालीफ के मौके पर इनका जो सब्र रजा बिल कजा और खुशी है, यहां से पता चलता है कि ये कैसे हैं। खुशी में तो हर आदमी खुश होता है, गम में खुश होना यही वो तो चीज है कि जो अल्लाह ताला अपने औलिया को ये चीज उनके कल्ब को अता फरमाते हैं कि उसमें फैसला है राजी रजा बिल कजा। सुभान अल्लाह। तो हजरत ने भी ये भी फरमाया था कि भाई आप बीमार हो गए, अल्लाह शिफा और सेहत दे, आप मजलिस में नहीं आ सकते। कहने लगे कि हजरत अल्लाह ताला ने मायो बिठा लिया है, जब दुल्हन रुखसत होती है तो रुखसत होने से पहले जो उसको कुछ दिन बिठा देते हैं भाई निकलो नहीं ताकि तेरा रंग गोरा हो जाए और तू ये हो जाए, तो उससे एक बात पता चलती है कि जब कोई औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। जब लानत होगी तो चेहरे पे हुस्न तो ना होगा ना, तो खुद इसको दुनिया वाले तस्लीम कर रहे हैं कि घर से ना निकलो किसी गैर की नजर तुम पे ना पड़े। माया उसी का नाम है ना जी, माया में यही होता है ना कि किसी गैर की नजर ना पड़े। तो अगर कोई औरत ये काम कर ले कि गैर की नजर वैसे ही ना पड़वाए तो फिर उसका हुस्न कैसा होगा, और अगर मर्द ये काम कर ले तो उसके उसकी आंखों में भी क्या चीज होगी। तो कहने लगे कि हजरत मायो बिठा दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि औरत रुखसत होने से पहले मायो बैठती है, तो गोया अल्लाह ताला के पास जाने वाला हूं महबूब के पास, तो अल्लाह ताला ने मुझको मायो बिठा लिया। वाह क्या सब्र रजा बिल कजा है, और ये मोहब्बत के समरात है, अल्लाह ताला की मोहब्बत के समरात है। जैसे अल्लाह ताला की याद में रोना, गुनाह उससे बचने में हिम्मत को इस्तेमाल करना, गुनाह और अगर गुनाह का सुदूर हो तो उस गुनाह के सुदूर के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार में जल्दी करना, ये अच्छे अखलाक और अल्लाह ताला की मोहब्बत के समरात में से। कोई मुसीबत कोई गम कोई परेशानी आए तो उस पर सब्र करना, उसको बर्दाश्त करना, रजा बिल कज़ा अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना, अपने कामों को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना, ये मोहब्बत के समरात में से। तो दुनिया की शदीद मोहब्बत भी जायज है, किसी को अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, कारोबार से मोहब्बत, तो ये ऐसी मोहब्बत भी जायज है। लेकिन जिस वक्त उस मोहब्बत का मुकाबला अल्लाह ताला की मोहब्बत से हो, तो उस वक्त में अल्लाह ताला की मोहब्बत को गालिब रखना, यही है वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी माओ से गुफ्तगू फरमाते थे, अपनी अजवाज से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुन्ना नुहद्दिसुहु कान व काना युहद्दिसुना, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते थे, आप हमसे बात फरमाया करते थे। लेकिन इदा सुनिया अज़ान, जिस वक्त अजान की आवाज आती थी, कअन्नहु लम यारिफना, आपका आलम ही होता था कि गोया कि आप हमें पहचानते भी नहीं। सुभान अल्लाह, क्यों? अब खालिक का हक आ गया, अब खालिक का हक आ गया। इसी का नाम है वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और यही वो मोहब्बत, असल में मोहब्बत क्या है? एक एहसास है, और एहसास और एक फिक्र है कि मेरी किसी हरकत से, मेरे किसी तरीके से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से, और मेरे देखने से, मेरे बैठने से, मेरे उठने से, किसी चीज से किसी को अजियत और तकलीफ ना हो। ये एहसास है बंदगी, और कि मैं मालिक की और खालिक की किसी नाफरमानी में मुबतला ना हूं, ये एहसास है एक। और जिस जालिम को यह एहसास ही ना हो, तो इसका मतलब ये तो मोहब्बत से खाली है। जैसे हमारा, हम लोगों का मामला है, जब हुकूक मांगने की बारी आती है तो जी हमें हुकूक दो, लेकिन हुकूक देना, इसमें हम कमजोर हैं, इसमें हम कमजोर। मसलन जैसे मौके आते हैं, कैसे मौके, के कोई किसी के साथ जब हम मामला करते हैं तो हम उसको सताते हैं, तंग करते हैं, अजियत देते हैं, और मामले में जो है बद मामलगी करते हैं, मसलन वादा पूरा ना करना। लेकिन जब कोई और हमसे ये काम करे, फिर हम शिकायत करते। तो याद रखिएगा, हमारे साथ अगर कोई मामला खराब करता है तो ये हमारे उस मामले का नतीजा निकलता है कि वो उसके मामला उसका, वो भी हमारे साथ फिर ऐसा कर रहा है। तो ये जो हमारे अंदर ये बात है कि मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह से एक आलिम ने कहा, इमाम थे, उन्होंने कहा कि हजरत आजकल मुक्तदी जो है इमाम से मोहब्बत ही नहीं करते। तो हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप क्या आप उनसे मोहब्बत करते? तो कहने लगे जब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मैं क्यों उनसे मोहब्बत करूं? चूंकि आलिम थे तो हजरत वाला आते कि इस्लाह तरबियत किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह। फरमाया कि देखो हदीस शरीफ में आया कि ला खैरा फीमल ला यालफ वला यूलफ, उस शख्स में खैर नहीं है जो ना किसी से मोहब्बत करे और ना जिससे कोई मोहब्बत करे, उस शख्स में खैर नहीं है। तो हजरत वाला ने फरमाया कि ला यालफ, यालफ पहले है या यूलफ पहले, क्या मतलब? यानी वो मोहब्बत करे और फिर लोग उससे मोहब्बत करेंगे। चूंकि आलिम थे, समझ गए, कहा हजरत वाकई बात है, यानी पता ही चला, मोहब्बत करोगे मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत करोगे मोहब्बत मिलेगी। सुभान अल्लाह। और इसकी मिसाल बहुत अच्छी छोटे बच्चों की है, अगर आप छोटे बच्चों से शफकत और मोहब्बत से पेश आए, वो आप पर फिदा हो जाएंगे, हर वक्त आगे पीछे घूमेंगे, और अगर हर वक्त उनसे डांट टपट और झड़कना तो नतीजा क्या होगा? गुस्सा करना, बच्चे कभी करीब नहीं आएंगे, वो कहेंगे ये तो ऐसा है, वो तो कभी करीब नहीं आते। तो जब छोटे बुक का मामला है तो मखलूक की अगर मोहब्बत चाहिए तो उससे मोहब्बत करनी होगी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गिव एंड टेक, दो और लो। जब दो मोहब्बत दोगे नहीं तो मोहब्बत मिलेगी कैसे? तो अल्लाह ताला की मोहब्बत कितनी मतलूब है? इतनी कि मखलूक की मोहब्बत पर गालिब हो जाए, और वो भी मौके पर जरूरत है। अब जैसे नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला के हुक्म की बंदगी बजा लाए, उसके बाद सारी रात है, इशा पढ़ ली सारी रात है, फजर पढ़ ली, अब जोहर तक जो है वो काम करे, कोई मना नहीं कर रहा, नमाज पढ़ ले फिर काम शुरू करे। अलबत्ता उस मोहब्बत का मौका उस पर होगा कि तिजारत करने वाले पर है कि कोई काम खिलाफ उसूल न करे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस बात की पाबंदी लगाई थी कि पाबंद किया था लोगों को कि जिसको तिजारत के उसूल ना आते हो वो बाजार में ना बैठे, वो हमारे बाजारों में ना बैठे। ताकि क्यों, कितनी अजीब बात कि कोई ताजिर किसी खरीदार को धोखा ना दे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि कोई ताजिर किसी खरीदार को धोखा ना दे। इतनी खैरखाही थी। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का जो मेयार है वो है अशद मोहब्बत। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बता दे, समझाए कैसे कि अल्लाहुम्मा जल हुब्बका अहब्ब इलैया मिन नफ्सी, ऐसी मोहब्बत हो जाए कि मेरी जान से ज्यादा। जैसे अब बिस्तर पर है, आराम कर रहा है, अब नींद आए और दूसरे तकाजे हैं कि दिल चाहता है कि मस्जिद में नमाज ना पढ़ूं लेकिन मस्जिद में पहुंच गया। नफ्स कहता है कि दाढ़ी ना रखो, शलवार टखनों से ऊपर ना करो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे। कोई किसी के साथ मामला क्या, माफी ना मांगो, जैसे माँ बाप के साथ किया, किसी और को क्या, अब माफी ना मांगो वरना लोग तुम्हें क्या कहेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत गालिब होगी तो कहेगा लोग कहने दो, मुझे अपने मालिक को अपने महबूब को नाराज नहीं करना। एक अमीर गुजरा सुल्तान, उसका नाम था अज़दुद्दीन। उसके जमाने में एक सुनार था, वो इतना अमानतदार और दयानतदार मशहूर था कि लोग उसके पास अपनी अमानतें रखते थे। एक मर्तबा एक शख्स हज पर जा रहा था तो उसके पास एक खतीर रकम थी, दीनार थे, तो उसने वहां उसे गुजरा तो उसने लोगों से कहा कि भाई, किसी से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई अमानतदार दयानतदार के लोग होता था तो उसके पास रकम रख के अमानत के तौर पे लोग चले जाते थे। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे सुनार है, वो बड़ा अमानतदार और दयानतदार है, रकम पड़ी थी, खैर उसने उसके पास ले रखवाई, उसको वो मोहर लगाकर और वो रख देते थे। हज के लिए गया, हज से जब वापस आया तो उसकी नीयत खराब हो गई, उसने इतनी बड़ी रकम तो मैं इसको कैसे दूं, क्यों दूं। तो उसने उसको दुत्कारा और कहा कोई मेरे पास नहीं है अमानत अमानत। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, ये क्या हो गया। अब किसी से अपना तस्करा, आप हर किसी को कैसे कहे, किसी से कहा तो उसने वो समझ गया कि कोई बात है। तो उसने समझाया कि अच्छा देखो एक काम करो, हमारा सुल्तान जो है अमीर अज़दुद्दीन, वो बहुत ही रहमदिल भी आदमी है और इंसाफ पसंद आदमी है और इंसाफ देता भी है, उसके पास चले जाओ। वो अमीर के पास चला गया और उसको जाकर सारी सूरत हाल बताई। उसने सूरत हाल सुनी, बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि अच्छा तुम एक काम करना कि उसकी दुकान के सामने तुम जरा बैठे रहना दो तीन चार दिन, किसी दिन मैं वहां से गुजरूंगा, जब मैं वहां से गुजरू ना तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम थोड़ा सा नखरे दिखाना और मिलने जुलने में और खैर खैरियत पूछेंगे बस, और ये इतना। वो चलाएंगे और फिर कहा चले जाएंगे, बहुत अच्छा। इधर सुल्तान ने क्या क्या कि अपने कारिंदों को भेजा कि जाओ फला सुनार के पास जाओ और उससे कुछ सलाह मशवरा करो कि अमीर को काजी की जरूरत है, तुम्हारे बारे में भी कुछ कुछ राय है तो तुम्हारी अमानत दयानत और उसको देखना है, तो फिर उसके बाद। तो इधर भेजा, वो जो सुनार ने सुना तो खुशी के मारे कि मैं अमीर की नजर में आ रहा हूं और मुझे ओहदा मिल रहा है, एमएनए बन जाऊंगा मैं, सुभान अल्लाह, फिर तो मोहल्ले की सड़कें भी बन जाएगी, बैंक अकाउंट भी मेरा भर जाएगा और फॉरेन करेंसी अकाउंट पे गैर मुल्क में मैं बैंक, मैं भी वहां पे भी महल बना सकूंगा। अब जनाब इधर वो कहा, इधर एक दिन सुल्तान दो चार रोज बाद गुजरा तो वो सामने बैठा था, उसने उसको आवाज दी सुल्तान ने, तो ऐसे हाँ क्या बात है, बिल्कुल रूखे अंदाज में उसने बातचीत की, यार तुम मिलते नहीं हो, कितना जमाना हुआ मुलाकात नहीं हुई, आया करो मिला करो, कभी कभी है तुम हमारे खास हो और ये और वो कहा। अब सारा बाजार ये मंजर देख रहा है, वो सुनार भी ये मंजर देख रहा है, उसने कहा ये तो भाई अमीर का कोई खास आदमी है। उसने अब वो उधर सुनता है, अच्छा कहा अच्छा भाई फिर आना, उसने अच्छा हाँ ठीक है वक्त होगा तो आ जाऊंगा। तो अमीर ने कहा कि भाई आना, मेहरबानी होगी, बड़ी खुशी होती है तुमसे। अब वो गया तो अब सबके उधर सुनार भी ये मंजर देख रहा है, कहीं इतना खास मुकर्रब आदमी, और उधर उसको काजी की पेशकश थी, उन्हें कहा ये तो मेरे खतरे में पड़ जाएगा। खैर वो गया तो आया, उसने कहा भाई देखो बात यह है कि आजकल तुम्हें पता है कितने टेंशन है और हालात कैसे हैं, बस जरा मैं ब्लड प्रेशर का मरीज भी हूँ और जरा भूलने की बीमारी हो गई, उम्र की ज्यादती से भूल जाता हूँ, तो एक काम करो जहाँ अमानतें रखी है तो तुम उसमें देख लो, अगर तुम्हारी अमानत है तो भाई ले जा, मुझे इससे क्या करना है, लेकिन मैं प्यार बातें भूल जाता हूँ। उसने अच्छा, उसने देखा पता तो उसको भी था, पता तो उसको भी था, खैर उसने बात बनाई और उसने कहा कि अच्छा ये इन्ना इल्ला यार मुझे माफ कर देना यार, ये उसको अमानत दी और वो चल पड़ा। उधर सुल्तान ने के पास गया कि हजरत अल्लाह आपको जजाए खैर दे, ये मेरा फरमाया अच्छा ये लो अमानत, तुम जाओ अल्लाह तुम्हें खुश रखे तुम जाओ। उस सुल्तान ने उसको सुनार को बुलवा लिया और सुनार को बुलाया और फिर उसकी गर्दन उड़ा दी कि लोग तुमको शरीफ और अच्छा इंसान समझकर अपनी अमानत तुम्हारे लगाते हैं और दयानत तुम पर करते हैं और तुम लोगों के साथ ये करते हो, उसकी गर्दन उड़वा दी। सुभानअल्लाह कैसा इंसाफ का। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एहसास हो, ये फिक्र हो कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, ये भी मोहब्बत के लवाजमात में से है, ये मौके पर पता चलेगा कि तिजारत कर रहे हैं दुनिया के आरजी नफे को देखना है, चाहे तिजारत हो हसीनों को देखना है, शहवत का मरज है, थोड़ी देर की लज्जत है। इसे हजरत वाला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये माना मासियत में मुजरिमाना थोड़ी लज्जत है, वो लज्जत भी है लेकिन मुजरिमाना, क्या जुर्म कर रहे हो, क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो। ये माना मासियत में मुजरिमाना थोड़ी लज्जत है मगर उस पालने वाले से ये कैसी बगावत है। तुम थोड़ी सी देर की लज्जत की खातिर से अपने खालिक अपने रज़ाक और अपने मालिक को नाराज कर लो। सुभानअल्लाह। इसलिए फरमाया कि अपनी जान से ज्यादा मैं नफसी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत हो, वह अहली घर वालों से भी ज्यादा, ऐसा नहीं कि औलाद जो है वो किसी गुनाह की और नाफरमानी की फरमाइश करें। उन्होंने कहा जी औलाद की मोहब्बत में जैसे पागल होते, औलाद की मोहब्बत में घर वालों की मोहब्बत में जो कहा बस वो कर डाला, ऐसा नहीं बल्कि शरीयत रसूल उसूल और जवाबत को देगी, उनकी जायज ख्वाहिशात को पूरा करे, अपनी हैसियत के माफिक उनकी जायज ख्वाहिशात को पूरा करे, लेकिन नाजायज और हराम ख्वाहिशात की तरफ ना जाए कि जी औलाद ने कहा वो सब काम कर डाला। जैसे आजकल ये फितना चला है बस औलादों को मोबाइल पकड़ा दिया फिर सर पकड़ के रो रहे, भाई आखिर तुझे क्या जरूरत है भाई मोबाइल की, तुझे क्या काम करना है, कुरान पाक का हाफिज हुआ उसको आईफोन पकड़ा दिया, तो ये तो अपने हाथ से सांप उसके हाथ में दे दिया, ये हालम है। यानी हिफ्ज कुरान का नतीजा ये निकलता है कि उसकी दीनी कुछ और खबरगिरी करते उल्टा उसके हाथ में सांप पकड़ा दिया, ले बेटा तू सांप से खेल, सांप को पकड़ने का मंत्र आता नहीं है उस बच्चे को और उसके हाथ में सांप दे दिया, यानी तकवा है नहीं अभी, अभी वो बच्चा है और कच्चा है, और सांप को पकड़ने का मंत्र है नहीं और औलादों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, तो कहां से बचेंगे। और वमिन अल माइल बारिद, शदीद प्यास में ठंडा पानी जैसे मरगूब होता है, या अल्लाह प्यासा चाहे, हाजी साहब फरमाते हैं प्यासा चाहे जैसे आब सर्द को, तेरी प्यास उससे भी बढ़कर मुझको हो, प्यासा चाहे जैसे आब सर्द को, तेरी प्यास उससे भी बढ़कर मुझको हो। और याद रखिएगा अल्लाह ताला की ये मोहब्बत जिसको अशद मोहब्बत कहा जाता है, ये मियार मोहब्बत, ये लवाजमात ईमान में से है और जरूरियात दीन में से है, यानी इसका हासिल करना ये मुसलमान के जिम्मे फर्ज है और जरूरी है, मुसलमान को आयन फर्ज आयन है कि इसको हासिल करे, और ये वो चीज है जो अल्लाह वालों की सोहबत से मिलती है। इसलिए हकीमुल उम्मत फरमाया करते थे मैं अल्लाह वालों की सोहबत को फर्ज आयन कहता हूँ, कि जरूरी है, क्यों, क्योंकि तकवा बगैर अल्लाह वालों की सोहबत के नहीं मिलता, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ معیار نہیں ملتا. اس لیے اللہ والوں کی صحبت یہ جو ہے فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو یہ معیار محبت, معیار اشد محبت ہم سب کو نصیب فرما دے کہ اپنی جان, اپنے اولاد, گھر والوں سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ, سارے عالم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا يا الله يا الله يا الله یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے, اپنی محبت کے اعمال نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے اہل محبت کی محبت عطا فرما دیجیے, جن کی محبت سے یا اللہ ہماری محبت اشد محبت میں تبدیل ہو جائے ان اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ آپ اپنے اولیاء کو جو خصوصیات اور یا اللہ تعالیٰ اخلاق اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رفتار کردار عطا فرما دیں, اپنے کرم سے ہم سب کو بھی نصیب فرما دیجیے. عارضی عطا فرما, تواضع عطا فرما, جملہ صفات حمیدہ, اخلاق حمیدہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما اور ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.